आज जो हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल कंसेप्ट नीड एंड पर्पस। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मंजू चुरुंगू जी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक एनआईओ से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार, वेलकम इस लाइव पीसीपी में जो आपका लाइब्रेरी साइंस पे है। आज पिछली बार जो हमने पढ़ा है वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के बारे में, हमने बताया था आपको, जहाँ पर हमने बहुत सारी बातें आपको बताई कि ई रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, ई बुक्स क्या होती हैं या ई जर्नल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या होता है, थीसिस रिपोर्ट्स या इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज क्यों ज़रूरी है और कहाँ पर होती हैं, ये सब हमने बात की है। मुझे लग रहा है आपको याद भी होगा। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है, जैसे कि मनीष ने बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, इसी का कॉन्सेप्ट नीड एंड स्कोप। इसके अलावा जो हम हमारा रेडियो में लाइव पीसीपी के अलावा आपका स्वयं प्रभा पर भी आपको लाइब्रेरी साइंस के में भी लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। मंडे को भी आप 1:30 से 2:30 बजे तक देख सकते हैं, उसका SMS भी आपके पास गया होगा एज अ स्टूडेंट। और अगर किसी के पास सपोज इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो वो इसे सब लोग टीवी पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे ये टीवी पे भी आता है, जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ आपको। तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, आपके पास स्वयं में भी है, आप वहाँ भी एडमिशन लेकर के वहाँ भी सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब्स पे भी हैं, तो आप कहीं पे भी आराम से अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। या हमारा NIS का जो वेब पेज है वहाँ पर भी मटेरियल है, ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर यूट्यूब से भी कनेक्टेड है, सभी सोर्सेस आपको एक जगह पे भी मिल रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, कि हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं लाइब्रेरी मटेरियल को और किस किस तरह के मटेरियल हमारी लाइब्रेरी में होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है और इनको करने से हमें क्या मिलता है, यही है आज के लेसन का मेन एम। तो जैसे कि बताया जा रहा है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपने किताबें या बाकी सब पढ़ाई का सामान लाके डंप कर दिया और रख दिया तो उसे हम लाइब्रेरी नहीं कह सकते हैं। हमें इस सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को जो भी है हमारे पास, इन्हें हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, एक क्लासिफाइड वे में रखना पड़ता है, ताकि हम उसे ज़रूरत पड़ने पे एकदम से हम उसे रेफर करें और हमें फटाफट हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हमें ढूंढने और जो भी ऑर्गेनाइज चीज़ होती है उसमें हमें कम समय लगता है ढूंढने में। तो इसीलिए लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है इस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में के लिए। ये जो मटेरियल है लाइब्रेरी में, हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होता है, नॉन टेक्सुअल मटेरियल भी होता है, पेपर बेस्ड भी होता है और डिजिटल कलेक्शंस भी होती हैं, और इन सबको अलग अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे कि हम बुक्स को अलग तरीके से रखते हैं, जर्नल्स को अलग तरीके से रखते हैं, मैगजीन्स को अलग से रखते हैं, और जो हमारे पास डिजिटल कंटेंट होता है उसे भी हम एक तरीके से रखते हैं, उसे भी क्लासिफाई किया जाता है ताकि आप आराम से वो ढूंढ सके, आपको मिल जाए, समय पे मिल जाए। अब जो हम इस लेसन में हम आपको बताएंगे, हम सब यही बताएंगे आपको कि क्या ज़रूरत है हमें ये सब मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने की, क्यों हम ये सब करते हैं, हम ये बताएंगे आपको। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास किस किस तरह के मटेरियल लाइब्रेरी में होते हैं, प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल में क्या क्या आता है, और लाइब्रेरी की इन सब चीज़ों की वजह से लाइब्रेरी की कितनी कीमत है, लाइब्रेरी की कितनी ज़रूरत है हम सबको, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी मटेरियल में क्या क्या है और फंक्शंस क्या है, यूज़ क्या है, और इन सब के इस लाइब्रेरी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने का सबसे अहम ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि लाइब्रेरी मटेरियल में क्या क्या आता है, लाइब्रेरी में किस किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या सामग्री होती है लाइब्रेरी में। बेसिकली अगर देखा जाए, जो भी हम समझते हैं, ह्यूमन थॉट जिसे कहते हैं, ह्यूमन नॉलेज जो है, किसी भी फॉर्म में हम इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, ताकि अगर मैंने कुछ लिखा है, कोई किताब बनाई है, हम इसे प्रिजर्व करें ताकि आगे जो जनरेशन हैं वो इसे यूज़ कर पाएँ, इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती हम सोचते हैं, फिर उसको नॉलेज की तरह से यूज़ करते हैं और फिर उसे लिखा जाता है. जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बुक पढ़ने से बहुत फ़ायदा हो जाता है हमें. जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए या हमने कहीं और से पढ़ा, हमने उसे आगे कैसे लेकर के, यही सब तरह के मटेरियल हैं जो प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल में लाइब्रेरी में रखे जाते हैं. इसी कलेक्शन को हम बहुत तरीके से अलग अलग तरीकों से रखते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है लाइब्रेरी का, मॉडर्न लाइब्रेरी के हिसाब से, मॉडर्न सोसाइटी का है, वो है डिजिटल कलेक्शन का भी है. लाइब्रेरी कलेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाली सोर्सेज होने या रिसोर्सेज होने से नहीं होगा, वी हैव टू गिव द सर्विसेज ऑल्सो. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग, अगर हमारी लाइब्रेरी में 50 जर्नल्स आ रहे हैं और इसके बारे में किसी को नहीं पता, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है लाइब्रेरी में इनको लाने का. इसके ऊपर हमारे पास सर्विसेज होने चाहिए, जैसे कि हम कास कहते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विसेज कहते हैं, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन कहते हैं नॉलेज का, जहाँ जिसे जो ज़रूरत है सिलेक्टिवली हम उस यूज़र को वही वाला सब्जेक्ट दे देते हैं, वही वाली चीज़ें वहाँ तक पहुँचाते हैं, या वो हमारे पास जब भी आते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें उनके पास पहुँचना है, वो हमारे पास आए ना आए, हमारी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए लाइब्रेरी की ताकि हम उन तक पहुँचे और उन्हें ये पता चलता रहे कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है और हमें नया में क्या मिलने वाला है. कंटेंट पेज हम सिलेक्ट करके भेज देते कि भाई इसमें ये चीज़ें आई हुई, अगर कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, किताबें बना रहे हैं, जैसे हम SLM बनाते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इसके लिए भी बहुत कुछ ज़रूरत पड़ती है पढ़ने की. तो इस तरह से जो हमारे पास रिसोर्स पर्सन आते हैं, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं, उन सब लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो ये लाइब्रेरी एक उससे देखा जाए तो लाइब्रेरी खाली मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना नहीं, इसमें सर्विसेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है. सर्विसेज से ही इसे लाइब्रेरी कहा जाएगा. तो किस किस तरह के लाइब्रेरी में मटेरियल्स होते हैं, वो है बुक्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, डिसर्टेशन थीसिस, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, मैप्स और रिपोर्ट्स. बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हुई हैं, पढ़ी हुई हैं हमने, कि इस इतनी तरह की चीज़ें हर लाइब्रेरी में होती हैं. अब बुक तो हर किसी को मालूम है, आप सबको भी पता है, बुक आप हर दिन ही हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि बुक 50 पेजेस से जो ऊपर का पब्लिकेशन होगा उसे हम किताब कहते हैं. तो ये प्रोटेक्टिव होता है, दोनों साइड्स कवर होते हैं उस पर. इसमें भी बहुत सारी वेराइटी होती है किताबों की, कि हमारे पास सिंगल वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम होगा, या हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होंगे. जैसे कि आप देखा जाता है NCERT की किताबें, वो आपको टेक्स्ट बुक्स होती, जो हम SLM देते हैं ये भी टेक्स्ट बुक्स की तरह ही यूज़ होती हैं. इसके अलावा रेफरेंस बुक्स होती हैं, मल्टी वॉल्यूम, जो हाँ हम एक ही बुक में पूरा ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो उसे हम कई दो तीन किताबों में भी छाप देते हैं. और इस तरह से बहुत वैरायटी है बुक्स की भी. एक जो भी आपका सप्लीमेंट है, एक सबसे अच्छा सप्लीमेंट जो भी है किसी के लिए भी, चाहे वो आप कोर्स रीडर्स के लिए है या बिजनेस है या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने वाला है, जितने भी लोग हैं सभी को बुक्स की इम्पोर्टेंस मालूम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो डिफाइन करती है, इट सेज दैट अ रिटन और प्रिंटेड वर्ड वर्क कंसिस्टिंग ऑफ पेजेस ग्लूड और स्विन टुगेदर साइड बाय द बाउंडेड एंड बाउंड इन कवर्स. जैसे मैंने बताया आपको, इसका भी यही है कि जो कुछ पेजेस जो हमने प्रिंट किए हैं, इनको हमने अच्छी तरह से सिया गया है ये इकट्ठे, और उनके ऊपर बाउंड पेजेस हैं, वो भी 50 पेजेस से ऊपर है. यही है इसका बेसिकली थॉट. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कहती है, मोस्ट बुक्स हैव अ प्रोटेक्टिव कवर, बुक्स आर रीजनेबली इनएक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. बुक्स का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती इनकी, अकॉर्डिंगली ही कॉस्ट पब्लिशर के हिसाब से कॉस्ट हो जाती है. अच्छी किताबें कभी कभी बहुत सस्ती भी मिलती हैं, उनकी कॉपीज बहुत सारी बिकती हैं, आप देखेंगे तो वो सस्ती भी मिलती हैं हमें. और बुक्स को स्टोर करना, आगे के लिए लेके जाना, अब हमें आज से 500 साल पुरानी किताबें भी मिलती हैं जो आर्काइव में रखी गई, उनको हम स्कैन करके रखते हैं, या हमारे पास कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको रखते हैं, स्कैन करके रखते हैं. इसी तरह से ये सब, इन सभी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुक क्या होती है, यही डेफिनेशन है आपकी बुक की, किताब की, कि 50 पेज से ऊपर जो भी होगा इसे किताब कहा जाता है. तो पीरियोडिकल पे आएंगे हम. बुक की तो एग्जांपल कोई भी हो सकती, कोई भी ऑथर हो सकता है. जैसे हमने यहाँ पर एक ऑथर लिया है, टाइटल है हमारा ट्रेजर आइलैंड, और रॉबर्ट लुइस ने ये की है. या इसी तरह हिंदी के बहुत सारे ऑथर्स हैं हमारे, कोई भी किताब लिखते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकती है कोई भी. पीरियोडिकल, पीरियोडिकल वो है, इट्स अ पब्लिकेशन विद डिस्टिंक्टिव टाइटल दैट अपीयर्स और स्टार्ट्स रेगुलर इंटरवल्स विदाउट प्रायर डिसीजन एज टू व्हेन लास्ट इशू विल अपीयर. इसमें हम क्या करते हैं, ये बुक की तरह हम इकट्ठा नहीं छापते हैं कि 50, 100, 200 पेजेस आ गए और इसे हमने छापा और एक बुक का फॉर्म दे दिया. पीरियोडिकल में हम एक टाइटल ले लेते हैं, उसे हम ये नहीं कहते कि ये कब खत्म हो जाएगा, ये सालों साल चलता रहता है. अभी शुरू हुआ इस साल, अगले साल भी चलेगा, और इसके वॉल्यूम्स बदलते रहते हैं और इनमें जो टॉपिक्स हैं वो भी बदलते रहते हैं. द आर्टिकल्स कंटेनिंग एडिटोरियल फीचर्स, कॉलम्स, स्टोरीज, अदर राइटिंग्स और सेवरल इसमें बुक में हम यूजुअली एक या दो ऑथर हो सकते हैं, मगर इसमें हर अगर कोई आर्टिकल 10 आर्टिकल हैं तो 10 ऑथर भी हो सकते हैं पीरियोडिकल के लिए. आप अगर किसी भी लाइब्रेरी में गए हैं और देखा होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, EPW है, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिकल वीकली है या यूनिवर्सिटी न्यूज है, ये सब आपका पीरियोडिकल में आता है. इसमें आपके टाइम पहले आ गए आर्टिकल्स कितने होंगे, 8-10 आर्टिकल्स होंगे, फिर नेक्स्ट में कुछ और आ जाएगा, तीसरे में कुछ और आएगा, पर इसके वॉल्यूम एक साल में फिर वो बदल देते हैं, अगले साल में दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा, इश्यूज फिर रहेंगे, 56 इश्यूज हैं तो 56 ही उस साल तक रहेंगे, और कंटेंट भी बदलता रहता है. यूनेस्को की जो डेफिनेशन है पीरियोडिकल्स की है, अ पब्लिकेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन इशू इन अ कंटिन्यूस सीरीज अंडर द सेम टाइटल. जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्सिटी न्यूज, ये यूनिवर्सिटी न्यूज ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, रेगुलर इरेगुलर जो भी रहेगा. कभी कभी वो एक इशू को दो दो इकट्ठा भी कर लेते हैं, नहीं छाप पाए हैं तो 2 और 3 को इकट्ठा करके छाप देंगे, तो इस तरह से नाम वही रहता है और सीरीज चलती रहती है. ये इसे हम पीरियोडिकल्स कहते हैं. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द सब्जेक्ट मटीरियल ऑफ पीरियोडिकल इज दैट लेटेस्ट और द करंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द रीडर्स थ्रू देम. लाइब्रेरी मटीरियल अपॉन देयर बींग रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी इज डिस्प्लेड प्रूडम प्रोमिनेंटली टू द रीडर्स एंड इज रिप्लेस्ड बाई द सब्सिक्वेंट वन. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है, किताब को हमने इकट्ठा एक बारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, या हमारा थॉट कंटेंट था वो बना लिया, इसमें ये है हमें लेटेस्ट चीजें डालते हैं इसमें. और लाइब्रेरी में जब आपका सेकेंड इशू आ गया, पहले वाले को रिप्लेस करके हम उसे अंदर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और दूसरे इशू को वहां पर डिस्प्ले कर देते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें हमें लेटेस्ट मिल जाते हैं. कभी कभी ये भी होता है, हम रेफरेंस ले लेते हैं पुराने का भी, पुराने जर्नल्स को निकाल निकाल के भी देखते हैं, अगर हमारा टॉपिक वहां पर भी होगा तो हम उन्हें भी ले लेते हैं. पर ये कंटिन्यूसली मोस्टली ये जो होता है इसमें सबसे ज्यादा आपको एकदम करंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं सभी, जो जैसे डिस्टेंस एजुकेशन का एक जर्नल है तो वो अपना एजुकेशन में ही डिस्टेंस एजुकेशन के ही आर्टिकल्स को लेता है, उसमें भी जो लेटेस्ट होगा वही दे देगा आपको. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वो था यूनिवर्सिटी न्यूज़ या APW या डिजिट, कोई भी है इस तरह के हैं. न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स तो यू ऑल नो कि न्यूज़पेपर में हमारे पास करंट इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स होते हैं, डाइवर्स फीचर्स होते हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं, एडिटोरियल्स भी होती हैं. इट्स प्रिंटेड ऑन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव लो ग्रेड पेपर, क्योंकि इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, एक बार में पेपर आज पढ़ लिया तो इट्स ऑफ नो यूज टुमारो काइंड ऑफ. ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिकली होगा जो हमने पहले बताया आपको. यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आगे जा करके मैगजीन्स या जर्नल्स में छपती हैं. यहाँ जो प्राइमरीली किसी ने अपना छोटा सा रिसर्च किया हो तो उसे छोटा सा बना के न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है, पर उसमें पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. ये आगे जा करके बुक्स में, फिर पहले तो जर्नल्स वगैरह में आती है, और फिर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी बुक्स वगैरह भी छपती. ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपका. हाँ, न्यूज़पेपर्स कंटेन द वर्ल्ड, नेशनल, स्टेट एंड लोकल न्यूज़पेपर्स. वर्ल्ड का भी अलग से होता है, नेशनल भी है स्टेट लेवल पे, और आपका एक लोकल जो अखबार है वो भी छपती है, उनके पास भी सेम ही चीज़ें होती हैं. एक एंटरटेनमेंट का भी आइटम डाल देते हैं वो, जैसे कभी जोक्स कर लिख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या आपका इसमें ऑप्शन कॉलम होती है, आप भी भेज सकते हैं कोई भी आर्टिकल, उसमें अलग अलग होते हैं. एजुकेशन का अलग होता है या आपका जॉब्स का अलग होता है, उस हिसाब से इसके साथ न्यूज़पेपर चेंज भी होता रहता है, मंडे को कभी कभी एजुकेशन टाइम साथ में आएगा, ट्यूसडे को जॉब्स का आएगा या वेंसडे को, कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें रहती है। और ये न्यूज़पेपर आप अपना ऑनलाइन भी देख सकते हैं, एग्जांपल्स तो आपके हिंदी अंग्रेज़ी में दोनों ही हैं, वो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हम अंग्रेज़ी में कहेंगे, नव भारत टाइम्स हिंदी में देख लेंगे, तो सभी हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। वी नीड टू बाय देम, यानी कि फ्री नहीं है, हमें वो परचेज करने पड़ते हैं। ऑनलाइन हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपका ऑनलाइन भी मिल जाएगा यहीं पर ई रिसोर्सेज में। इसके बाद हम आते हैं नॉन प्रिंट मटेरियल में। ये अभी तक जो थी बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब हमारा प्रिंट में आ रहा है। और लाइब्रेरी क्या रखती है इसके अलावा, वो है नॉन प्रिंट मटेरियल। नॉन प्रिंट मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज एनी मटेरियल अवेलेबल इन from other than the printed material. They are rapidly becoming important information learning source material for the modern libraries. Non-print material differ from the print material in several ways. One of the chief differences is that machine must be there to serve as a mediator between the information and the information user. यही बात है नॉन प्रिंट मटेरियल में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आजकल मॉडर्न लाइब्रेरीज में देखा गया है। हमें ई वर्शन ऑफ द बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सभी कुछ चाहिए होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसमें हमें मशीन ज़रूर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या आपका फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या बुक पढ़ने के लिए किंडल चाहिए, कुछ भी चाहिए होगा, पर एक मीडिया चाहिए हमें। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं इसे, फॉर दैट मैटर आपको अगर डाउनलोड करके रख लिया आपने तो बाद में पढ़ सकते हैं। वैसे आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा, जब आप अगर उसी टाइम देख रहे हैं, नेट पे डाल के देख रहे हैं, तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए होता है। फिर ऑडियो विजुअल मटेरियल्स की बात आ रही है। ऑडियो विजुअल मटेरियल इज अ जेनरिक टर्म टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन कंटेंट दैट हैड बीन स्टोर्ड एंड ट्रांसमिट मीडिया इन formats that use images, sounds rather than sometimes in addition to the textual material. Audiovisual material में आपने देखा होगा, हमारे पास CDs, DVDs जो भी होते थे, सभी में टेक्स्ट भी आता, साउंड्स भी आ जाती हैं और टेक्स्ट मटेरियल के अलावा सब कुछ आता है। ये अगर बुक में आपको खाली पिक्चर दिखती है तो इसमें हम वी कैन फील इट, हम सुन सकते हैं उस आवाज़ को जो उन्होंने बताया है यहाँ पर जाओ, या उन्होंने कोई पिक दिखाई है, उसकी वीडियो बनाई है, तो वो हम आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमें समझाना चाहते हैं। जो भी वीडियो, जैसे हम आपको इसी लेसन को कई तरीकों से पढ़ाते हैं, तो वीडियो में आप जा करके वीडियो सुन लेते हैं, आप देख लेते हैं, उसमें हम PPT डालते हैं, या कभी कभी कोई एनिमेशन भी है, बहुत सारे साइंस वाली बुक्स में एनिमेशन भी डाल देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हार्ट कैसे वर्क करता है, किडनी कैसे वर्क करती है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उस तरह की ऑडियो विजुअल मटेरियल में डल जाती हैं चीज़ें। ये हमें स्पेशली ये हेल्प करता है, अगर कहीं पर कई लोग नहीं पढ़ सकते उसे सुन सकते हैं, तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम, इन एजुकेशनल एड की तरह यूज़ होता है ये। इसमें ऑडियो कैसेट्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, मोशन पिक्चर्स हैं, स्लाइड्स हैं। पहले पहले हमारे लाइब्रेरी में माइक्रोफोम्स, माइक्रोफिश भी होते थे, अब CD रोम्स, DVD। उस समय में हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए माइक्रोफोम, माइक्रोफिश ही होते थे और उसके रीडर्स होते थे। उस जितना हम बहुत ज़्यादा 500 पेजेस की कोई इन्फॉर्मेशन है, हमें उसे कंप्रेस करके हम उसे माइक्रोफोन में रख लेते थे और उसे रीडर पे बाद में देख भी सकते थे, और ये सेव भी रहता था हमारे लिए लाइब्रेरीज के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है, रिसोर्सेज जो है, हम उनके बारे में कहेंगे। कंप्यूटर्स and related electronic sources have come to play in the central role in modern libraries. Electronic resources are of the prime significance here. Electronic resources refer as the e-resources, and that have added value to the libraries for offering better services to the users. Electronic resources can be defined as library material that's used and available electronically. They are thus library resources which includes documents in electronic e-format and can be accessed locally via internet globally, and many reference books are also available in the electronic फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का सबसे बड़ा यही यूज़ है कि आप कभी भी कहीं भी और कितने भी लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं इकट्ठे। अगर एक बुक है हमारे पास रेफरेंस का, तो एक ही यूज़ कर सकता है, एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। इस केस में हमारे पास इसको डाउनलोडेबल कई लोग इकट्ठा पढ़ सकते हैं और कभी भी कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी बुक आपको लाइब्रेरी में वापस करना है तो यू कैन नॉट इसको आपने डाउनलोड करके रखा, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस. यूजर्स आर प्रोवाइडेड एक्सेस टू वेरियस ई रिसोर्सेज विच आर ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई डाटाबेसिस, ई मैगजीन्स, ई इमेजेस, ई ऑडियो, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक ई न्यूज़लेटर्स, ई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ये सब इसी के वेराइटी हैं. आप अगर कोई किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे आप वहाँ आपको बहुत सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं. अगर लाइब्रेरी की किसी वेबसाइट पे जाएंगे ई जर्नल्स, ई बुक्स, ई इमेजेस, ये सब दिखेगा आपको. और अगर और किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, उनके फॉर्म्स देखेंगे, उनके एंट्रेंस कैसे होती, ये सब ई फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल है. इसी तरह से आपको बुक्स भी मिल जाती हैं लाइब्रेरीज की, जो हार्ड कॉपी में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप अगर ई फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. अदर मटेरियल में है, वी हैव, अभी तक तो जो हमने बात करी थी, पहले हमने आपको बताया हार्ड कॉपी में प्रिंट में क्या होता है, फिर हमने बताया नॉन प्रिंट में क्या होता है, फिर हमने बताया आपको ई रिसोर्सेज में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में क्या क्या है. इसके अलावा हमारे पास है कि बिसाइड्स द वेरियस प्रिंट एंड नॉन बुक मटेरियल, देर आर मोर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स यू शुड नो. दीज इंक्लूड स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, पैम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, डिजर्टेशन एंड थीसिस, मैप्स एंड चार्ट्स. दीज मटेरियल्स आर यूजुअली कलेक्टेड बाय लाइब्रेरीज इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस. डिजर्टेशन एंड थीसिस आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज. ये सब चीज़ें जो हम पहले खरीद के रखते थे, हम ग्लोब्स रखते थे या हम लोग मैप्स रखते थे, अब ये सब हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं तो इतना रखने की ज़रूरत नहीं है. इनको अब लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं क्योंकि ये सब हमें अब मिल जाती हैं. पर ये सब मटेरियल भी अवेलेबल होता है, पैम्पलेट्स हैं या आपके रिपोर्ट्स हैं, किसी तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, पेटेंट्स हैं, ये सब हम लाइब्रेरीज में अवेलेबल रहते हैं. अब हम बताएंगे आपको नीड टू ऑर्गेनाइज द लाइब्रेरी मटेरियल. क्यों हमें, क्या ज़रूरत है हमें लाइब्रेरी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने की. लाइब्रेरी मटेरियल हैव प्लेंटी ऑफ रीडिंग मटेरियल फॉर वेरियस काइंड्स, बट जस्ट सेटिंग अप अ लाइब्रेरी हैज़ नो यूज़ फॉर द यूजर्स. दे कैन नॉट ईजिली एंड रेडिली एक्सेस द मटेरियल. इट हैज़ टू बी एंश्योर दैट लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड यूजर्स आर ब्रॉट टुगेदर. They need to organize the library material. अगर हम आपको बहुत सारा material available है, even आप Google करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर library का यहाँ पर सिर्फ यही use है कि वो आपको वो information दे देता है, sort करता है उस information को जो आपके लायक है, जो आपका time नहीं खराब करता है, और उसी information को organize करना और तरीके से रखने के लिए ही library material को organize करने की ज़रूरत है. The need for organizing library material is to maximize the search capabilities for users, display the available resources and maximize physical, intellectual time barriers. जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब हमारा टाइम बर्बाद कर लेता है, टाइम बर्बाद करने से बचाता है हमें. इसी वजह से हमारे लाइब्रेरी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. इसी वजह से हम इसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं.
जी मैम, अभी इस समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे. आप शिक्षार्थियों, श्रोताओं, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़.
बच्चे, बूढ़े या जवान,
शिक्षा का अवसर एक समान.
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान,
लॉग ऑन करें www.nius.ac.in
और प्राप्त करें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के सभी विषयों की जानकारी.
Thank you. हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए।
प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित NIOS बेसिक शिक्षा, OBE माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण VET कार्यक्रमों के लिए NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in या NIOS के नजदीकी केंद्र से आज ही संपर्क करें। NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र।
मुक्त विद्यावाणी है, मुक्त विद्यावाणी। शिक्षा पाना सरल यहाँ है, कहती यही जुबानी। संचार माध्यम लेकर आया ज्ञान की नई कहानी। मुक्त विद्यावाणी है, मुक्त विद्यावाणी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण पिछड़े असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार।
यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं।
कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम।
न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं।
अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-1800-9393 पर।
मुक्त विद्यावाणी है, मुक्त विद्यावाणी।
ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार।
सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी।
मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी है, मुक्त विद्यावाणी।
गाँव के लोगों सुन लो, युवक युवतियों और से सुन लो। काम काज के साथ में पढ़ लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो।
अरे सब सुन लो भैया,
चाहो टीवी वीडियो से पढ़ लो, विषय भी मर्जी के तुम चुन लो। परीक्षा दे के पास भी कर लो, सुन लो भाइयों बहनों सुन लो।
ठीक कह रहा बहनों, शिक्षा ही उद्देश्य हमारा।
शिक्षा के मोती तुम चुन लो, सुन लो गांव के लोगों सुन लो। युवक युवतियों और से सुन लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो।
बालको जिंदगी को कामयाब बना लो,
सुन लो गांव के लोगों सुन लो, युवक युवतियों और से सुन लो।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 MHz पर। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, चर्चा चल रही है सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए। जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, और जो टॉपिक आज है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, मटेरियल, कंसेप्ट, नीड एंड पर्पज। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मंजू चुरुंगू जी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक NIOS से। मैम, एक बार पुनः स्वागत है आपका।
थैंक यू मनीष, वेलकम अगेन।
जी,
अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमने आपको लाइब्रेरी मटेरियल्स क्यों, किस किस तरह के हैं और कितनी वैरायटी है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं या ई रिसोर्सेज हैं, ये सभी हैं एक लाइब्रेरी का पार्ट है, लाइब्रेरी के सामग्री का एक हिस्सा है। तो इसी को हम क्यों, इसकी नीड क्या है, हमें ज़रूरत क्या है इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि जो है मैक्सिमम यूज़ हो जाए। यूज़र जो भी हमारे पास आ जाए उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे मिल जाए मटेरियल, उसे इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए परेशानी ना हो, उसका टाइम ना बर्बाद हो। इसीलिए हम अपने रिसोर्सेज को डिस्प्ले में भी रखते हैं, ताकि जो भी आए उसे नजर पड़े और एकदम वो देख सके। और इस तरह से जितना भी हमने अपना बजट पैसा खर्च करा है लाइब्रेरी पे, वो हम यूज भी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल यूजेज हो रहा है हमारे उस चीज का जो हम चाहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है हम अपना किस तरह से ऑर्गेनाइज करें लाइब्रेरी मटेरियल को। अब हम बताएंगे आपको पर्पस क्या है हमारा लाइब्रेरी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी मटेरियल फॉर ईजी लोकेशन ऑफ द सेम, दस सेविंग द टाइम ऑफ द यूजर्स इन लोकेटिंग द डॉक्यूमेंट। सब्जेक्ट एक्सेस टू द केस ऑफ द सर्टन सब्जेक्ट मटेरियल ऑल्सो बिकम्स ईजी एंड द place looks tidy. The purpose of organizing library material is to ensure location of library material, facilitate easy accessibility to the material, enhance the effective utilization of the material, and attract users to the library. मेन एम हमारा यही है, पर्पस यही है हमारा कि हम सब्जेक्ट वाइज मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखें और उसके साथ जो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ऑडियो है, वीडियो है, जिस सब्जेक्ट का हमें ये मालूम हो, ताकि हमें लोकेशन पता होगी. लोकेशन कैसे पता होगी हमें? क्योंकि हमने इसे ऑर्गेनाइज करा है, क्लासिफाई करा है, और हमने वहाँ तक जाने के लिए एक टूल बनाया है, वो है कैटलॉग, ताकि वो क्लास नंबर तक हमें पहुँचाता है. क्लास नंबर से हमें सब्जेक्ट्स पता चल जाते हैं. इस तरह से हमारी जो है एक्सेसिबिलिटी जो है इजी हो जाती है मटेरियल के लिए, फैसिलिटेट हो जाते हैं यूज़र्स, उनका टाइम खराब नहीं होता है, और इफेक्टिव यूज़ भी हो जाता है मटेरियल का. जैसे मैं कह रही थी कि अगर हमने इतना सारा पैसा खर्च करा और उसका यूटिलाइजेशन नहीं है तो वो ठीक नहीं है. तो इसका मतलब है लाइब्रेरी में जो सर्विसेज हैं और लाइब्रेरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइब्रेरी का, ताकि ये स्टोर की तरह ना लगे. हमने स्टोर में जैसे गए, उठाए, रखा सामान, वहाँ पर भी हमें ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है. अब अगर देखा जाए टेक्निकली, तो इन सब स्टेप्स को, इस सब लाइब्रेरी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइब्रेरी के पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. शुरुआत से देखा जाए तो एक्विजिशन है हमारा, फिर हम कलेक्शन कैसे डेवलप करते हैं, या फिर हम टेक्निकल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम आपको एकदम शॉर्ट में बताएंगे. कि मटेरियल किसी भी लाइब्रेरी, अगर हमसे हमारी साइंस लाइब्रेरी है और हमने वहाँ पर आर्ट्स की किताबें ला के रखी, तो जो हमारा यूज़र है, एंड यूज़र है, उसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी कलेक्शन किस तरह की है वो होनी चाहिए हमारे यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो यूज़र हमारा यूज़ कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कलेक्शन है, उनसे पूछ के भी हमने लाया है, या हम उनकी चॉइस को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं. द मेन गोल ऑफ एवरी लाइब्रेरी इज टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द यूजर कम्युनिटी. इट्स समटाइम्स ईजी टू गेट इन्वॉल्व अप विद द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ लाइब्रेरी. वी लूज साइट ऑफ द गोल. हमारा मेन गोल जो है, मेन इम्पोर्टेंस जो है हमारी, वो है हमारा कम्युनिटी जो है, हमारी यूज़र कम्युनिटी है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है. और उस गोल को हमें माइंड से कभी भी नहीं निकालना चाहिए. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपके सामने आपका एक यूज़र आया हुआ है और उसे कुछ चाहिए, तो यू शुड लीव एवरीथिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प दैट पर्सन, सो दैट वॉट एवर ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, दे आर गेटिंग इट ऑन टाइम. टाइम बच रहा है उनका. हाउ वी ऑर्गेनाइज द बुक्स इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, द एंड रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट. अब पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी क्लास नंबर है नहीं है, सही है गलत है नहीं है, क्योंकि अब हमारे सभी के पास कंप्यूटराइज्ड है, ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटेड. और जो क्लास नंबर हमने दिया भी है, अगर इधर उधर भी है 19-20 कोई फ़र्क भी आता उसमें, मगर हमारी उसी के हिसाब से उसकी फाइलिंग हुई होगी. तो आपने ओपैक में देखा, वेब ओपैक में देखा 370.5 है, तो आप 370.5 में ही जाएंगे जहाँ पर आपका मटेरियल ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पर आपकी फाइलिंग हुई है किताबों की. तो उस तरह से हमको डिजिटाइज ऑटोमेट करने से काफ़ी मदद हुई है. पहले तो हम सिर्फ टूल था हमारे पास, एक कैटलॉग जिसको हम देखते थे, अगर उसमें ज़रा से भी गड़बड़ हो जाती तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. अब बहुत सारे तरीके हैं, हम जैसे हमारा वेब ओपैक है, NIS का भी वेब ओपैक है, आप उस पर देखेंगे और कई तरीकों से आप ढूंढ सकते हैं, ऑथर से, टाइटल से, आप सब्जेक्ट से, एक्सेशन नंबर से, कहीं से भी आप पहुँच सकते हैं उस बुक तक, और वो बुक आपको अपने क्लास नंबर के हिसाब से वहीं पर मिलेगी, और उस तरह से आपका जो है टाइम सेव हो जाएगा. इसमें स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप है एक्विजिशन है. Start organizing a library. Librarian must know he or she needs to. This first step is to identify the collection requirements. जैसे मैंने यही कह रही थी कि सबसे important जहाँ पर जो responsibility है librarian की, librarian charge की, जो भी आपका library में है, और उसकी सबसे important रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लाइब्रेरी कलेक्शन कैसा है हमारा. अगर हमारी प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी है तो उसमें हमने बड़े बड़े बुक्स रखे हुए, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं. हमें ये देखना है कि हम बच्चों के हिसाब से हमारे पास क्या है, हम उनका फिक्शन कलेक्शन कैसा है, वो पढ़ पा रहे नहीं पा रहे, कलरफुल चीज़ें हैं या नहीं है. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइब्रेरियन का, जहाँ पर वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. जिस तरह की लाइब्रेरी है, मटेरियल का कलेक्शन उसी तरह का होगा. वंस कलेक्शन डेवलपमेंट में, वंस अ लाइब्रेरियन हैज एक्सेस द कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट स्टेप इज टू बिगिन अक्वायरिंग दोज आइटम्स. दिस स्टेप इज इम्परेटिव दैट अ लाइब्रेरियन नोज द बेस्ट वेज विच टू अक्वायर एंड नेसेसरी आइटम्स. देयर आर वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन इट. जैसे कि हम लोग पहले किताबें मंगवाते थे, हम लोग डिस्प्ले करते हैं किताबों को ऑन डिमांड. अगर कहीं से डिमांड मिली है हमें, तो हम स्पेशली वो किताब लेके आ जाते हैं, या हम किसी भी पब्लिशर को कहते हैं कि आप हमारे पास किताबें भेज दीजिए, हम उन्हें डिस्प्ले करते हैं. उसके बाद हम जो यूज़र्स हैं हमारे, उन्हें हम बुलाते हैं, उनको पूछते हैं आप अपनी किताब देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंगली किताबें हैं, मिल रही हैं नहीं मिल रही, इसमें से चूज़ कीजिए. फिर एक लिस्ट बन जाती है फाइनली कि हमें इसमें से क्या चूज़ करना. और ये भी देखा जाता है, कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके बजट के हिसाब से आपकी लाइब्रेरी को फिट हो रहा है नहीं है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अप. सिलेक्ट मटेरियल ऑन द बेस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स. देन यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर्स, अक्वायर द मटेरियल, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द न्यूली अक्वायर्ड मटेरियल, टेक्निकल प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल. ये सारे स्टेप्स हैं कलेक्शन को कैसे हम बढ़ाते हैं, कलेक्शन डेवलपमेंट कैसा होता है. फाइनली आपने 500 या 2000 किताबें मंगाई, उसमें से आपकी 200, 300 किताबें या 400 किताबें सिलेक्ट हो गई. उसको फिर आपने एक बारी खुद भी देख लिया कि हाँ, ये वाकई ये किताबें हैं जो हमारे बजट में भी फिट हो रही हैं, और बुक्स वाकई यूजफुल भी हैं हमारे यूजर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कितनी बुक्स रखी, तो इनको ऑर्डर प्लेस किया जाता है. उसके बाद हम ये मटेरियल जब हमारे पास आ जाती है, बिलिंग के पास आ जाए बाद, तो फिर हम इस मटेरियल को टेक्निकल प्रोसेसिंग करते हैं. टेक्निकल प्रोसेसिंग में आपको पता ही है, लाइब्रेरी में टेक्निकल प्रोसेसिंग में एक्विजिशन के बाद है, वो है आपका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. और क्लासिफिकेशन के बाद आपका कैटलॉगिंग में, अब एक ही स्टेप है, अगर आपका ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है तो आप अपना डेटाबेस में इसकी एंट्री करेंगे और एक ही बार में एंट्री हो जाती है, वहाँ पर आपको रिपीट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती. न्यू डॉक्यूमेंट आपने एक बार ही एंट्री कर ली, वही आपको कई जगहों पे जहाँ आकर इशू करना होगा, वही आपको वहाँ भी वो किताब मिल जाएगी. और आपका क्लासिफिकेशन होने के बाद आपका ये टेक्निकल स्टेप एक बार में करके ख़त्म हो जाता है. पहले हम लोगों को कई जगहों पे इश्यू रिटर्न के लिए अलग रखना पड़ता था, या कई कई बारी एंट्री करनी पड़ती थी. अभी ऐसा नहीं है, कहीं से भी आपने एंट्री कर ली और आपका मटेरियल आपके पैक में चला गया, आपका मटेरियल दिखने लग जाता है आपका न्यू कलेक्शन क्या है. और आप में उसमें रिपोर्ट्स भी कई तरह की निकल जाती हैं, आपको एक महीने की रिपोर्ट चाहिए या एक 15 दिन की रिपोर्ट चाहिए, हमने अभी क्या नया लाया है, ये सब उसमें से निकल जाता है, जो कि आप अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये नया आया है, विच अट्रैक्ट्स देम. हाँ, ये नया मटेरियल आया है, ये हमने किताबें खरीदी हैं लाइब्रेरी में, ये नए पब्लिकेशंस हैं, सो दे ट्राई टू विजिट यू द लाइब्रेरी. उसके बाद हमारा एक और स्टेप है, वो है जो पेस्टिंग है, स्टैम्पिंग है, लेबलिंग है. वो आपके लाइब्रेरी में भी टेक्निकल ही लोग होते हैं जो इसमें, स्टैम्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पेज आपको एक सीक्रेट पेज पे स्टैम्प करना होता है, और टाइटल पेज के पीछे एक स्टैम्प लगाना जरूरी होता है, और लास्ट पेज पे भी लगाते हैं. पेस्टिंग में आपको बुक पॉकेट, लेबलिंग, ये सब करते हैं वहां पर, ताकि आपका जो बुक कार्ड है या इशू स्लिप है, ये सब आपके पास अपने स्कूल के हिसाब से, जो भी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का नाम ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए, उसमें ये सब आप पेस्ट करते हो. पेस्टिंग भी क्लीन होनी चाहिए, नहीं कि किसी बुक का कोई पन्ना लिखा हुआ है लास्ट और आपने उसी पे पेस्ट कर दिया. नहीं, यू शुड थिंक बिफोर पेस्टिंग. या आपने क्लास नंबर ऐसी जगह पे लिख लिया कि वो दूसरी इन्फॉर्मेशन को ओवरपावर कर रहा है, वो किसी चीज़ को छुपा रहा है आपके ऑथर को, नहीं. उसके लिए भी टाइटल के पेज के पीछे एक जगह होती है जहाँ पर आप एक्सेशन नंबर लिख सकते हैं, या आप क्लास नंबर लिख सकते हैं, या जहाँ पर आप पेस्टिंग करना चाहते हैं टिकट के लिए पॉकेट के लिए यू हैव अ प्रॉपर प्लेस फॉर दैट और इट शुड बी डन वेरी क्लीनली, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि बुक गंदा नहीं लगे कि गोंद लगा है, चिपका है, पिचका है, ऐसा नहीं. और जो फिर स्पाइन पे जो आप क्लास नंबर, बुक नंबर, एक्सेशन नंबर लगाते हैं, स्पाइन पे लगाने वाला भी बहुत ही क्लीन होना चाहिए. उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगाई जाती है सो दैट इट शुड नॉट गेट रिमूव्ड कि किसी ने हाथ लगा और वो हट गया या वो गंदा हो गया, उस तरह से नहीं होना चाहिए. इस तरह से हम लोग इसके बाद, ये सब करने के बाद फिर डिस्प्ले हो जाते हैं रिसोर्सेज आपके जो भी आए हैं. उसके बाद आप जब नया लॉट आ जाएगा, दीज ऑल विल गो टू योर शेल्व्स. तो इसके बाद ये शेल्फ की तरफ मूव हो जाएंगी तो आपका ये परमानेंट कलेक्शन में चला जाता है. इस तरह से नई नई किताबें ऐड होती रहती हैं. बिसाइड्स दैट, वो लाइब्रेरी मटेरियल मस्ट बी मेंटेन्ड इफ इट्स वेरी. It has to stay effective and relevant for the changing technologies. For this, librarians must adopt the procedure of related to maintenance in order to keep the collection current and functional. That requires care of the library resources, shelf maintenance, maintaining records of the collection development, identifying the lost and damaged material, housekeeping activities for the collection. इसमें बहुत ही important चीज ये है कि अगर आपके रिसोर्सेज आ गए हैं, आपका रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और जगह भी, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. पर एक चीज ये है जो लाइब्रेरियंस को देखनी जरूरी है कि आपका जो मटेरियल ऑब्सोलीट हो रहा है, 10 साल पुराना हो रहा है, किताबें जहां पर आप नया डालना चाहते हैं, आपको वो देखना जरूरी है कि किताबों की कंडीशन कैसी है. बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है तो उन्हें अलग कर लीजिए, उन्हें वीडिंग की जरूरत होती है. You have to remove them from the shelf. या कोई ऐसी किताब है जो आपको नहीं जरूरत लगती तो आप एक आर्काइवल सेक्शन बना लीजिए जहां पर आपको लगता है ये पुराना मटेरियल कभी काम आ सकता है, कभी जरूरत पड़ सकता है, रेफरेंस के तौर पर जरूरत हो सकती है. तो आप, यू कैन मूव दैट मटेरियल फ्रॉम द शेल्फ टू द आर्काइवल सेक्शन. आप उसे अलग से बाइंड करके रख सकते हैं. अदरवाइज तो लाइब्रेरी का स्पेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी. यू हैव टू keep on removing also the things so that the new things can come in. आपका जितना भी journal है, magazines है, newspapers है, जो इसकी भी weeding होती रहनी चाहिए so that it's not taking up your lot of space, it's not allowing you to grow. एक obsolete library होना अच्छा नहीं रहेगा, ना आपके readers उसमें आपको पसंद करेंगे. तो ये सब चीजें जो है बहुत ही जरूरी है हमारे library material को organize करने के लिए. जो अभी तक हम लोगों ने इस lesson में जो भी पढ़ा, जो भी याद हुआ है अभी तक हमें, वो है यूजर्स रिलाई ऑन लाइब्रेरीज विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट टू टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, नॉलेज डिसेमिनेशन विच इज़ अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ लाइब्रेरीज. आपको पता है हम लोग लाइब्रेरीज हैं किस लिए? वो इसलिए हैं, दे आर सपोर्ट बेसिकली टू द टीचर्स, लर्नर्स, रिसर्च जो कर रहे हैं उनके लिए, या कोई भी कुछ लिखना चाहता है, कोई भी यूजर हो, उनका जो ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होती है? वो लाइब्रेरी से ही पूरी होती है. यही हमारा मेन एम है बेसिकली. पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल इन द लाइब्रेरी इज टू मेक ईजियर फॉर द लाइब्रेरियन एंड द यूजर्स टू फाइंड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. कि ना तो लाइब्रेरियन घूमता रहे घंटों की मटेरियल नहीं मिल रहा, ना तो यूजर घूमते रहे मटेरियल के लिए. तो वी शुड नो वेयर वी हैव केप्ट एंड व्हाट इज आर ऑर्गेनाइजिंग, क्या हमने कौन सा फॉलोअप करा है, कौन सा रूल से हम लगा रहे हैं. दिस ऑल वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस एंड दिस यू हैव to teach to your users also. ये नहीं कि सिर्फ मुझे पता है कि यहाँ पर DDC है और इसमें 100 से 1000 तक के नंबर चल रहे हैं और सिर्फ ये मुझे पता नहीं. ये आप जगह जगह पर लिख के रखिए, बताइए 100 में ये फिलोसफी के नंबर्स आ रहे हैं, 200 में आपका रिलीजन वाले सारे नंबर्स आएंगे. तो यूजर्स को भी कन्वीनियंट हो जाएगा. हाँ, मुझे अगर जाना है और एजुकेशन में जाना तो मैं एकदम से अपना 370 है मेरा, तो आई विल गो स्ट्रेट वे टू द 370. इस तरह से आपको थोड़े थोड़े कार्ड्स लगा के रखने चाहिए, डिस्प्ले रैक्स के बाहर लगाना चाहिए, विच विल बी हेल्पिंग देम टू फाइंड आउट द मटेरियल. In order to be effective, libraries have to acquire suitable material needed for the users. For this reason, it's essential librarians should be aware of the various types and forms of the material available. ये सब हमें बहुत ज़रूरी रखना है माइंड में, ताकि librarians को भी कि हमें किस तरह का material अपनी library में लाना है, existing material की ज़रूरत है या नहीं, उसे weeding करना है, इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है हमें, so that we should be able to organize the library material properly. Thank you, listeners.